श्रोताओं, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम सत्य वचन में हम अध्ययन कर रहे हैं लैव व्यवस्था नामक पुस्तक की, जिसमें धार्मिक पर्वों, अनुष्ठानों, शुद्धता की विधियां, नैतिक आचरणों, सातवें वर्ष और जुबली वर्ष से संबंधित नियमों का वर्णन है।
प्रिय मित्र, आप सबको मेरा मसीही नमस्कार मिले। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आप सब के लिए भी यही आशा रखता हूँ। मित्र, पिछले अध्ययन में हमने लय व्यवस्था की पुस्तक उसके 23 अध्याय और उसके 1 से 14 पद में इन विषयों पर चर्चा किया। विश्राम दिन के पवित्र समय, फसा का पवित्र समय, अखमीरी रोटी के पवित्र समय और प्रथम फसल के पवित्र समय। इससे पहले कि अब हम आगे बढ़ें, आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबको फिर से एक बार दिया है ताकि हम आपके जीवित वचन का अध्ययन कर सके। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें से प्रत्येक की आत्मिक आंखों को, हमारे कानों को, हमारे हृदयों को, हमारे विचारों को और हमारे एकाग्रतापन को खोल दें ताकि जब हम आपके वचन को सुने तो आपका जीवित वचन हमारे हृदय से बातचीत करने पाए। इस समय हमारी प्रार्थना है उन प्रिय भाई बहनों के लिए, उन माता पिताओं के लिए जो किसी न किसी रीति से दुखी हैं, निराश हैं और अपने जीवन को समाप्त करना चाहते हैं और बीमारी और तंगी हालत में हैं। हमारी प्रार्थना है जीवित प्रभु, आप उन पर कृपा दृष्टि करें ताकि वे जाने पाएं कि आप उनसे प्यार करते हैं, आप उनकी चिंता करते हैं, आप उनकी जरूरतों को समझते हैं। यद्यपि उनके माता पिता, भाई बहन, प्रियजन उन्हें छोड़ सकते हैं, लेकिन आप कभी नहीं छोड़ते हैं क्योंकि वे आपके हैं और आप उनसे प्यार करते हैं। प्रभु, आज की इस शाम की घड़ी में आप उनसे बातचीत करें। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्र, आज हम लय व्यवस्था की पुस्तक 23 अध्याय उसके 15 से 44 पद का अध्ययन करेंगे। आज के अध्ययन का शीर्षक भी पवित्र छुट्टियां है। प्रिय मित्र, पिछले अध्ययन में हमने देखा कि ये पवित्र छुट्टियां आनंद मनाने और खुशियां मनाने का पर्व था। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग आनंदित रहें और आज हम कुछ और पवित्र पर्वों के बारे में भी सीखेंगे। आज के अध्ययन में हम इन बिंदुओं पर विचार करेंगे, पेंतिकोस्त का पवित्र समय, नरसिंहे का पवित्र समय, प्रायश्चित के महान दिन का पवित्र समय और झोपड़ी पर्व का पवित्र समय। प्रिय मित्र, आइए अब हम प्रथम बिंदु पेंतिकोस्त के पवित्र समय पर चर्चा करें। यहाँ पर इन क्रमों पर ध्यान दीजिए जो हमें यहाँ पर दिए गए हैं। फसा बताता है कि मसीह हमारा फसा है और हमारे लिए बलिदान हुआ। अखमीरी रोटी मसीह के साथ हमारी सहभागिता है। उसके बाद प्रथम फल मसीह के पुनरुत्थान को दर्शाता है जो मृतकों में से पहला फल है। अब हम पेंतिकोस्त को देखेंगे। लय व्यवस्था की पुस्तक 23 अध्याय उसके 15 और 16 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर उस विश्राम दिन के दूसरे दिन से अर्थात जिस दिन तुम हिलाई जाने वाली भेंट के पुले को लाओगे, उस दिन से पूरे 7 विश्राम दिन गिन लेना। सातवें विश्राम दिन के दूसरे दिन तक 50 दिन गिनना और 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाना। पेंतिकोस्त के संबंध में हमें कई चीजों को देखने की जरूरत है क्योंकि आज लोग इसका कई अर्थ निकालते हैं जो बिल्कुल शास्त्र सम्मत नहीं है। पेंतिकोस्त का पर्व हमेशा सप्ताह के पहला दिन पड़ता था। वे 7 विश्राम दिन को गिनते थे जो 7 सप्ताह या 49वां दिन होता है। सातवां विश्राम दिन के बाद सप्ताह का पहला दिन पेंतिकोस्त था। प्रिय मित्र, कलीसिया सप्ताह के पहले दिन जन्मा था। यह सप्ताह का पहला दिन था जब हमारा प्रभु यीशु जी उठा। क्या यह हमें कुछ नहीं बताता है? क्या कलीसिया का पुराना विश्राम दिन मानना अजीब बात नहीं होगा जो पुरानी सृष्टि की है, जबकि कलीसिया नई सृष्टि की है? जब कलीसिया सप्ताह के पहले दिन मिलता है और कलीसिया के जन्मदिन का उत्सव मनाते हैं तो इस पर्व को सप्ताह का पर्व भी कहा जाता है। पेंतिकोस्त का प्रतीकात्मक अर्थ लगाने के लिए मनुष्य को अनुमान की छूट नहीं दिया गया है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 1 और 4 पद में लिखा है, जब पेंतिकोस का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य भाषा बोलने लगे। जब पेंतिकोस का दिन आया का अर्थ दोपहर 12 बजे या शाम 6 बजे नहीं था। जब पेंतिकोस का दिन आया का अर्थ है उसका पूरा होना जो लय व्यवस्था में दिया गया है, या विश्वासियों को प्रभु यीशु में बपतिस्मा देने के लिए पवित्र आत्मा का आना और कलीसिया का बाहर बुलाने की शुरुआत है। पेंतिकोस कलीसिया का जन्म दिवस है। प्रेमित यीशु मसीह के पुनरुत्थान के 50वें दिन बाद पवित्र आत्मा आया। परमेश्वर अपने कैलेंडर के अनुसार चल रहा था और वह समय पर काम कर रहा था। इसराइलियों को अन्न बलि चढ़ाना था, वह कलीसिया का प्रतीक था और कलीसिया एक नई चीज है। प्रभु यीशु ने यह नहीं कहा कि वह हमें पुराना कपड़ा देगा और हम उसमें पैबंद लगाएं। वह धार्मिकता का बिल्कुल नया कपड़ा लाने को आया। मसीह में होने का अर्थ है उसकी धार्मिकता को पहनना, और परमेश्वर हमें इसी तरह से देखता है। प्रिय मित्र, हमें समय क्रम को देखने की जरूरत है। यीशु मसीह के जी उठने के बाद वह 40 दिन तक अपने आप को जीवित दिखाता रहा। तब ठीक स्वर्ग उठाए जाने के पहले उसने अपने शिष्यों से कहा कि वे यरूशलेम को न छोड़े परंतु पिता की प्रतिज्ञा का इंतजार करें। लुका के सुसमाचार 24 अध्याय उसके 49वें पद में उसने उनसे कहा कि वे स्वर्ग से पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरे जाएंगे। प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अब हम लय व्यवस्था की पुस्तक 23 अध्याय उसके 17 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, तुम अपने घरों में से एपा के 2/10 अंश मैदे की 2 रोटियां हिलाने की भेंट के लिए ले आना, वे खमीर के साथ पकाई जाएं और यहोवा के लिए पहली उपज ठहरें। प्रिय मित्र, क्या आपने इस पद में कोई भौचक्के करने वाली बातों को देखा है? हमने पहले कहा है कि खमीर शैतान का सिद्धांत है और इसे बलिदान के साथ शामिल नहीं होना था, लेकिन यहाँ उसका एक अपवाद है। यह कलीसिया का प्रतीकात्मक है और यह एक नया चढ़ावा वह अन्न बलि है जिसमें खमीर शामिल है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि कलीसिया में बुराई है। यह उन लोगों के लिए बिल्कुल सच है जो साधारणता इसको देखते हैं। प्रिय मित्र, मैं कई वर्षों से एक प्रचारक का काम कर रहा हूँ और मैंने देश के कई राज्यों में सेवा किया है। बहुत अच्छे अच्छे कलीसियाओं में सेवा की और बड़े आनंद के साथ उन्हें याद भी करता हूँ। मेरे इन कलीसिया के सदस्यों के साथ अच्छी संगति थी। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया और मैंने भी उन्हें प्यार दिया। हम लोग एक दूसरे से बहुत नजदीक थे, फिर भी मैं साक्षी दे सकता हूँ कि कलीसिया में बुराई है, इसलिए खमीर इस चढ़ावे में शामिल किया गया है। यह इस धरती की कलीसिया के विषय में कहता है, जैसे मैं और आप देखते और जानते हैं इसमें बुराई है। कलीसिया के अस्तित्व में आने से पहले ही प्रभु यीशु मसीह इसे जानता था। लय व्यवस्था 23 उसके 18 से 20 पद में हम आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, और उस रोटी के संग एक एक वर्ष के 7 निर्दोष भेड़ के बच्चे और 1 बछड़ा और 2 मेढ़े चढ़ाना, वे अपने अपने साथ के अन्न बलि और अर्घ समेत यहोवा के लिए होम बलि के समान चढ़ाए जाएं, अर्थात वे यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध देने वाला हव्य ठहरें। फिर पाप बलि के लिए 1 बकरा और मेल बलि के लिए 1-1 वर्ष के 2 भेड़ के बच्चे चढ़ाना, तब याजक उनको पहली उपज की रोटी समेत यहोवा के सामने हिलाने की भेंट के लिए हिलाए और इन रोटियों के संग वे 2 भेड़ के बच्चे भी हिलाए जाएं, वे यहोवा के लिए पवित्र और याजक का भाग ठहरें। प्रिय मित्र, सभी चढ़ावा या बलिदान इसी समय चढ़ाना था। यह सब कुछ मसीह है और उसने जो कुछ भी किया है सब कलीसिया के लिए है। विश्वासी प्रतिदिन उसे सहायता ले सकता है। सबसे पहले आप उसके पास उद्धार के लिए आ सकते हैं। आप सहायता, दया, सांत्वना और विश्राम के लिए उसके पास आ सकते हैं। जीवन के सभी परिस्थितियों में आप उसके पास आ सकते हैं। सभी बलिदान इसी समय चढ़ाया जाना था। प्रिय मित्र, क्या यह रुचिदायक बात नहीं है कि इस दृश्य में परमेश्वर आपको और मुझको किस प्रकार कुछ महान सच्चाइयों को दे रहे हैं? वह अरुचिकर दैवीय सिद्धांत के स्थान पर तस्वीरों को इस्तेमाल करते हैं। हम लय व्यवस्था 23 उसके 21 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, और तुम उसी दिन यह प्रचार करना कि आज हमारी एक पवित्र सभा होगी और परिश्रम का कोई काम न करना, यह तुम्हारे सारे घरानों में, तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में सदा की विधि ठहरे। प्रिय मित्र, उस दिन उन्हें विश्राम करना था और सारे कामों को बंद करना था। हमें भी यही करना है जब हम मसीह के पास आते हैं, जैसे तीतुस 3:5 पद में लिखा है, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा है। हम लय व्यवस्था 23:22 पद में आगे पढ़ते हैं, जब तुम अपने देश में के खेत काटो तब अपने खेत के कोनों को पूरी रीति से न काटना और खेत में गिरी हुई बालों को न इकट्ठा करना, उसे दीनहीन और परदेशी के लिए छोड़ देना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। मित्र, देश के अनुसार पवित्र दिन को अनुकूल बनाया गया है। उत्सव मनाने के बीच उन्हें गरीबों और अजनबियों को स्मरण रखना था। यह कलीसिया और विश्वासियों के व्यवहारिक पहलू का एक हिस्सा है। हम अनुग्रह से बचाए गए हैं, लेकिन हमें लोगों को परमेश्वर का वचन देने और लोगों को सहायता करने का प्रयास करना चाहिए। मैं विश्वास नहीं करता कि बिना सुसमाचार सुनाए कलीसिया को किसी समाज सेवा में जुड़ने का अधिकार है। लोगों को खिलाने और जरूरत के समय उनकी मदद करने के साथ साथ हमें उन्हें सुसमाचार सुनाना होगा। हमें स्मरण रखना चाहिए कि खाली पेट भूखा आदमी सुसमाचार सुनने को बहुत उत्सुक नहीं होगा। याकूब के पत्र 2:14-20 पद में इसके बारे में कुछ कहा गया है। प्रिय मित्र, यह कलीसिया को उठाने के बाद उस महान कटनी की ओर देख रहा है जब परमेश्वर अन्य जातियों को स्मरण करेगा। याकूब की पत्री 1:18 पद में लिखा है, उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हों। शुरुआती कलीसिया यहूदियों की थी और यह प्रथम फल था, लेकिन उसके बाद अन्य जातियों का बड़ा झुंड इसमें शामिल होना था। मत्ती रचित सुसमाचार 13:38-39 पद में हमारा प्रभु जगत के अंत के बारे में कहता है, खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य के संतान और जंगली बीज दुष्ट के संतान है। जिस वैरी ने उनको बोया वह शैतान है, कटनी जगत का अंत है और काटने वाला स्वर्गदूत है। यह जगत के अंत का न्याय है और स्वर्गदूतों को कलीसिया के उठाए जाने से कोई संबंध नहीं है। यहाँ विचार जगत में आने वाले न्याय के विषय में है, जैसे यशायाह नबी की पुस्तक 42:1 पद में लिखा है, मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है, मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है, वह अन्य जातियों के लिए न्याय प्रकट करेगा। प्रिय मित्र, आइए अब हम दूसरे विषय नरसिंगे का पवित्र समय पर विचार करें। लय व्यवस्था की पुस्तक 23:23-25 पद में लिखा हुआ है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इसराइलियों से कह कि सातवें महीने के पहले दिन को तुम्हारे लिए परम विश्राम हो, उसमें स्मरण दिलाने के लिए नरसिंगे फूके जाएं और एक पवित्र सभा इकट्ठी हो। उस दिन तुम परिश्रम का कोई काम न करना और यहोवा के लिए एक हव्य चढ़ाना। प्रिय मित्र, यहाँ तिथि महत्वपूर्ण है और सातवां महीना में 3 पर्व होता है। यह एक प्रकार का विश्राम महीना है, जिस प्रकार विश्राम दिन और विश्राम वर्ष है। यह सभ्य वर्ष की शुरुआत की पहचान है, जैसे फसह धार्मिक वर्ष की शुरुआत की पहचान है। गिनती की पुस्तक 10 के अनुसार चांदी के 2 नरसिंगे फूंकने का इस्तेमाल जंगल में इसराइलियों को आगे बढ़ने के लिए किया जाता था। उनको आगे बढ़ाने के लिए नरसिंगे को 7 बार फूंका जाता था। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 7 नरसिंगे हैं जो महान पीड़ा के समय का है, और जब इसराइलियों को उनके देश में वापस कर दिया जाएगा, जैसे यशायाह नबी की पुस्तक 27:13 पद में लिखा है, उस समय बड़ा नरसिंगा फूका जाएगा और जो असुर देश में नाश हो रहे थे और जो मिस्र देश में बरबस बसाए हुए थे, वे यरूशलेम में आकर पवित्र पर्वत पर यहोवा को दंडवत करेंगे। उसी प्रकार मत्ती रचित सुसमाचार 24:31 पद में लिखा है, और तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशा से उसके चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेंगे। इसराइलों की पुनः स्थापना के पहले कलीसिया जगत छोड़ चुकी होगी। इसराइल प्रभु के वाणी को नरसिंगे के समान सुनेंगे, जैसे भजन संहिता 89:15 में लिखा है, क्या ही धन्य है वह समाज जो आनंद के ललकार को पहचानता है, हे यहोवा वे लोग तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं। नरसिंगे को आने वाले न्याय के साथ जोड़ा गया है। आइए अब हम तीसरे बिंदु प्रायश्चित के महान दिन का पवित्र समय पर विचार करें। लय व्यवस्था की पुस्तक 23 अध्याय उसके 26 से 32 पद में हम पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, उसी सातवें महीने का दसवां दिन प्रायश्चित का दिन माना जाए, वह तुम्हारी पवित्र सभा का दिन होगा और उसमें तुम अपने अपने जीव को दुख देना और यहोवा का हव्य चढ़ाना। उस दिन तुम किसी प्रकार का कामकाज न करना, क्योंकि वह प्रायश्चित का दिन नियुक्त किया गया है, जिसमें तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के सामने तुम्हारे लिए प्रायश्चित किया जाएगा। इसलिए जो प्राणी उस दिन दुख न सहे, वह अपने लोगों में से नाश किया जाएगा, और जो प्राणी उस दिन किसी प्रकार का कामकाज करे, उस प्राणी को मैं उसके लोगों के बीच में से नाश कर डालूंगा। तुम किसी प्रकार का कामकाज न करना, यह तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में तुम्हारे घरानों में सदा की विधि ठहरे। वह दिन तुम्हारे लिए परम विश्राम का हो, उसमें तुम अपने अपने जीव को दुख देना और उस महीने के नवे दिन की सांझ से लेकर दूसरी सांझ तक अपना विश्राम दिन माना करना। लय व्यवस्था के पुस्तक 16 अध्याय में प्रायश्चित के महान दिन का संपूर्ण विचार बताया गया है। यहाँ तीन बार कहा गया है, अपने अपने जीव को दुख देना। यह दूसरे पर्वों के दिन के तुलना में एक गंभीर दिन था जो सबसे अलग था। इसके विपरीत यह ध्यान देना रुचिदायक होगा कि हर एक 50 वर्ष में प्रायश्चित के दिन जुबली का नरसिंगा फूका जाता था, और लय व्यवस्था की पुस्तक उसके 25 अध्याय और उसके 8 और 9 पद के अनुसार यह आनंद और उत्सव का चिन्ह था। जब आपके और मेरे पापों का दाम चुकाया गया तो हमारे लिए अब छुटकारा है। यही जुबली वर्ष है। यह कितना महिमापूर्ण वर्ष रहा होगा। प्रिय मित्र, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और चौथी बिंदु झोपड़ी का पवित्र समय पर विचार करते हैं। लय व्यवस्था की पुस्तक 23 अध्याय 33 से 36 पद में हम पढ़ते हैं, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इसराइलियों से कह कि उसी सातवें महीने के 15वें दिन से 7 दिन तक यहोवा के लिए झोपड़ियों का पर्व रहा करे। पहले दिन पवित्र सभा हो, उसमें परिश्रम का कोई काम ना करना। सातों दिन यहोवा के लिए हव्य चढ़ाया करना, फिर आठवें दिन तुम्हारी पवित्र सभा हो और यहोवा के लिए हव्य चढ़ाना। वह महासभा का दिन है और उसमें परिश्रम का कोई काम न करना। सातवां महीना में यह तीसरा पर्व है। यह एक स्मारक और भविष्यवाणीत्मक पवित्र समय दोनों था। इसके कुछ दिन बाद ही प्रायश्चित का महान दिन मनाया जाता है। एक यादगार के रूप में यह उन दिनों के बारे में कहता है जब इसराइली जंगलों में यात्रा करते थे और तंबू में रहा करते थे। भविष्यवाणी रूप से यह उस समय की ओर इशारा करता है जब परमेश्वर उनके पापों को दूर करेगा और वे फिर से सुरक्षित प्रतिज्ञा के देश में वास करेंगे। जैसे जकरिया नबी की पुस्तक 12 अध्याय के 10 पद, 13 अध्याय के 1 पद तथा मीका नबी की पुस्तक 4 अध्याय के 4 पद में लिखा है, और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा, तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने वेधा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे एकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौठे के लिए करते हैं। उसी समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप मलिनता धोने के निमित्त एक बहता हुआ सोता होगा, और लोग आगे को युद्ध विद्या न सीखेंगे, परंतु वे अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष तले बैठा करेंगे, और कोई उनको न डराएगा। सेनाओं के यहोवा ने यही वचन दिया है। हम लय व्यवस्था 23 उसके 37 से 38 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, यहोवा के नियत पर्व ये ही हैं, इनमें तुम यहोवा को हव्य चढ़ाना, अर्थात होम बलि, अन्न बलि, मेल बलि और अर्घ प्रत्येक अपने अपने नियत समय पर चढ़ाया जाए, और पवित्र सभा का प्रचार करना। इन सबों से अधिक यहोवा के विश्राम दिन को मानना और अपनी भेंटों और सब मन्नतों और स्वेच्छा बलियों को जो यहोवा को अर्पण करोगे चढ़ाया करना। प्रिय मित्र, पर्व के दिनों में विशेष जोर डाला गया है कि मनुष्यों की भलाई के लिए परमेश्वर किन किन बातों से आनंदित होता है। लय व्यवस्था 23 अध्याय के 39 से 44 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, फिर सातवें महीने के 15वें दिन को जब तुम देश की उपज को इकट्ठा कर चुको, तब 7 दिन तक यहोवा का पर्व मनाना, पहले दिन परम विश्राम हो और 8वें दिन परम विश्राम हो, और पहले दिन तुम अच्छे अच्छे वृक्षों की उपज और खजूर के पत्ते और घने वृक्षों की डालियां और नालों में के मजनू को लेकर अपने परमेश्वर यहोवा के सामने 7 दिन तक आनंद करना, और प्रतिवर्ष 7 दिन तक यहोवा के लिए यह पर्व माना करना। यह तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में सदा की विधि ठहरे कि 7वें महीने में यह पर्व माना जाए। 7 दिन तक तुम झोपड़ियों में रहा करना, अर्थात जितने जन्म के इसराइली हैं वे सब के सब झोपड़ियों में रहें, इसलिए कि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लोग जान रखें कि जब यहोवा हम इसराइलियों को मिस्र देश से निकाल कर ला रहा था तब उसने उनको झोपड़ियों में टिकाया था। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, और मूसा ने इसराइलियों को यहोवा के पर्व के नियत समय कह सुनाए। प्रिय मित्र, प्रायश्चित के महान दिन के बाद जब उनके पापों का पूर्ण प्रायश्चित किया जाता है और देश के फसल और फलों को मंदिर में लाया जाता है तो बड़ा उत्सव मनाया जाता था। उन्हें जंगल में यात्रा की यादगार के लिए और भविष्य की ओर संकेत करने के लिए तंबू में रहना पड़ता था। इब्रानियों के पत्री 11 अध्याय में हमें बताया गया है कि वे सब विश्वास में मरे। उन्होंने प्रतिज्ञा की वस्तु को प्राप्त नहीं किया, परंतु उन्हें दूर से देखा। वे उनके विषय में निश्चित थे और उन्हें स्वीकार भी किया। वे उन दिनों की ओर देख रहे थे जब उन्हें जंगल की तरह तंबू में नहीं रहना पड़ेगा, परंतु वे परम सुख शांति काल में होंगे। इस संसार के लिए यही आशा है। परम सुख शांति काल में यह पवित्र समय का उत्सव मनाया जाएगा, जैसे जकर्याह नबी की पुस्तक 14 अध्याय उसके 16 से 18 पद में लिखा है, तब जितने लोग यरूशलेम पर चढ़ने वाले सब जातियों में से बचे रहेंगे वे प्रति वर्ष राजा को अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और झोपड़ियों का पर्व मनाने के लिए यरूशलेम को जाया करेंगे, और पृथ्वी के कुलों में से जो लोग यरूशलेम में राजा अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने के लिए न जाएंगे उनके यहाँ वर्षा न होगी, और यदि मिस्र का कुल वहाँ न आए तो क्या उन पर वह मरी न पड़ेगी, जिससे यहोवा उन जातियों को मारेगा जो झोपड़ियों का पर मानने के लिए न जाएंगे। मित्र, जकर्याह पुस्तक का संपूर्ण 14 अध्याय पढ़ने में आपको बहुत रुचिकर लगेगा। यह पर्व न केवल परम सुख शांति का भविष्यात्मक है, बल्कि यह अनंत काल और अनंत राज्य की ओर भी संकेत करता है। जैसे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 21 अध्याय के 3 पद में लिखा है, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। मित्र, यह झोपड़ी का पर्व का परिपूर्णता है। 7वां महीना में 7 दिन तक उन्हें उत्सव मनाना था। यह इस संसार के परमेश्वर के लोगों का अंतिम और उत्सव मनाने के विषय कहता है। उसके स्वर के लोग उसके साथ नई यरूशलेम में होंगे। प्रिय मित्र, हमारे आगे एक बहुत अच्छा भविष्य है। यह कितनी सुखद बात है, जहां चारों ओर भय, अशांति और निराशा में लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं, परमेश्वर हमें दिलासा देता है। जहां वैज्ञानिक और बुद्धिजीवी लोग अंधकारपूर्ण भविष्य की बात करते हैं, परमेश्वर हमें सुनहरे काल का आश्वासन देता है। आइए हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए प्रतिदिन जीवन बिताएं और उसकी संगति में बढ़ते जाएं, ताकि हम उस देश में जाएं जो यरूशलेम है, और वहां पर हम परमेश्वर को महिमा दे सकें। यहां पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, और मैं विश्वास करता हूं कि इस वचन के द्वारा आपने अवश्य ही आशीष प्राप्त किया है। प्रभु आप सबकी सहायता करे और बहुतायत से आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
यही समय है प्रभु से बातें करने का, यही समय है यीशु से विनती करने का, यही समय है आराधना स्तुति करने का, यही समय है यीशु से प्रार्थना करने का। सारी सृष्टि का तू बादशाह।